लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। जो व्यक्ति बहुत डांटे जाने पर भी हट करता है, वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार नहीं होगा। जब धर्मी प्रबल है तो जनता प्रसन्न है, किंतु जब दुष्ट शासन करता है तो जनता करहाती है। श्रोताओ, ये थे सूक्त ग्रंथ के 29वें अध्याय के प्रथम दो पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सूक्त ग्रंथ के 29वें अध्याय की व्याख्या आरंभ की थी। 27 पदों वाले 29वें अध्याय में सूक्त ग्रंथ का लेखक राजा सुलेमान बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बीच अंतर जैसे एक सामान्य विषय पर अपनी चर्चा को जारी रखता है। मूर्ख व्यक्ति के आगे बुद्धिमान को किस प्रकार पेश आना चाहिए, इसकी सलाह 29वें अध्याय में दी गई है। इसके प्रथम पद में व्यक्ति के जिद्दी रवैये अथवा उसकी हट धर्मिता की निंदा की गई है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का विरोध करता और ईश नियमों का उल्लंघन करता है, ऐसा व्यक्ति जिसे अक्सर डांटा जाता है लेकिन वह डांट को नहीं सुनता, इसके बजाय वह अपनी गर्दन को कठोर कर लेता है। यहाँ उस तरह के व्यक्ति का वर्णन है जो ईश्वर के दयालु धैर्य पर विश्वास नहीं करता, वह ज्ञान को लगातार अस्वीकार करता और ईश्वर के खिलाफ अपने जिद्दी रवैये के कारण न्याय के प्रति उदासीन हो जाता है। वह सोचता है कि न्याय कभी नहीं मिल सकता, जबकि ईश्वर पर भरोसा और विश्वास मनुष्य को न्याय दिलाता है। फिर दूसरे पद में लेखक धर्मी लोगों द्वारा शासन को पूरे समुदाय के लिए हितकारी और दुष्टों द्वारा शासन को सबके लिए हानिकारक निरूपित करता है। धर्म परायण व्यक्ति जब शासन करते हैं तो वे सबके हित की बात सोचते हैं। इसके विपरीत जब दुष्ट सत्ताधारी होता है तो समुदाय और देश दोनों को नुकसान पहुंचता है, अराजकता बढ़ती है और जनता की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। लोग करहाने लगते हैं और अपनी नियति पर विलाप करते हैं। फिर 29वें अध्याय के तीसरे पद में आज्ञाकारी पुत्र की प्रशंसा और अवज्ञाकारी एवं उड़ाऊ पुत्र की निंदा की गई है। लेखक कहता है, प्रज्ञा प्रेमी अपने पिता को आनंदित करता, किंतु जो वेश्या गमन करता वह अपनी संपत्ति उड़ाता है। श्रोताओ, जब संतान प्यार से जीती अपने माता पिता का आदर करती है और बुद्धिमानी से जीवन के नियमों का पालन करती है तो वह हर किसी भी माता पिता के लिए खुशी का कारण बनती है। माता पिता को ऐसी संतान पर गर्व होता है। इसके विपरीत जब पुत्र वेश्या गमन करने लग जाता है, वेश्याओं में अपना धन बर्बाद करता है, तो वह अपने माता पिता को दुखी करता है और खुद मूर्खतापूर्ण रास्ते पर चलता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, वह निरा मूर्ख है। उसका अनुचित व्यवहार पिता को दुखी करता, क्योंकि अपने बेटे को कंगाल बनते देख पिता का दिल एक शीशे की तरह टूटकर चूर चूर हो जाता है। आगे चौथे पद में लेखक एक बार फिर अच्छे और सुदृढ़ शासन का होना जरूरी बताता है। अच्छा राजा या अच्छा शासक न्याय द्वारा देश की स्थापना करता है। राष्ट्र में जब दुष्टों को दंडित किया जाता है और उन पर लगाम लगाई जाती है, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता होती है और समझौतों का सम्मान किया जाता है, तब समाज में न्याय, विकास और आशीर्वाद के लिए एक आधार बनता है। इसके विपरीत जब न्याय का दुरुपयोग किया जाता है, रिश्वत ली जाती है, तो समाज में कानून के सामने निष्पक्षता और समानता की नींव धराशायी हो जाती है। अमीर और कुटिल लोग समृद्ध हो जाते हैं और सामान्य जनता विलाप करती है, वह कंगाली में जीवन यापन को मजबूर हो जाती है। राष्ट्र का कानून पक्षपात और अन्याय के कारण निरर्थक हो जाता है, जबकि स्वार्थी प्रलोभनों का सामना करने के लिए ईमानदारी और नैतिक साहस की नितांत आवश्यकता होती है।
धन्यवाद प्रभु तुझको दूंगा, निष्ठावान हृदय के साथ। धन्यवाद प्रभु तुझको दूंगा निष्ठावान।
और अब आइए 29वें अध्याय के 5 से लेकर 7 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। लेखक कहता है, जो अपने पड़ोसी की चापलूसी करता, वह अपने पैरों के लिए जाल बिछाता है। दुष्ट अपने ही पाप के जाल में फंसता, किंतु धर्मी उल्लसित होकर आनंद मनाता है। धर्मी दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट को उनकी कोई जानकारी नहीं होती। श्रोताओं को बता दें कि सूक्त ग्रंथ का 29वां अध्याय धार्मिकता, न्याय, अनुशासन और विनम्रता संबंधी सदियों पुरानी प्रज्ञा की बातों को खूबसूरती से व्यक्त करता है। यह पाठकों को स्वतः के दृष्टिकोण और कार्यों पर विचार करने की चुनौती देता है। यह अध्याय हमें मूर्खता के बजाय बुद्धिमता, दुष्टता के बजाय न्याय, अभिमान के बजाय विनम्रता और लक्ष्यहीनता के बजाय दूरदर्शिता चुनने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, और इस प्रकार सार्वभौमिक सत्यों के साथ यह नीति परक और नैतिक जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस अध्याय के 5वें पद में लेखक पड़ोसी की चापलूसी को गलत निरूपित करता है, क्योंकि पड़ोसी की चापलूसी करने वाला पड़ोसी का भला नहीं चाहता, बल्कि वह उसके लिए जाल बिछाता है। चापलूसी के पीछे उसका इरादा बुरा होता है। वह अपने पड़ोसी की चापलूसी इसलिए करता है ताकि उससे फायदा उठा सके। अस्तु, बुद्धिमानी इसी में है कि जो लोग हमारी चापलूसी करते हैं, उन पर हम संदेह करें कि वे हमारे लिए गुप्त रूप से जाल बिछा रहे हैं और तदनुसार सावधान रहें। 29वें अध्याय के 6वें पद में आगे लेखक कहता है, दुष्ट अपने ही पाप के जाल में फंसता, किंतु धर्मी उल्लसित होकर आनंद मनाता है। इस पद में श्रोताओं, पाप पूर्ण मार्ग के खतरे और पवित्रता के मार्ग की सुखदता के बीच अंतर दर्शाया गया है। पाप पूर्ण मार्ग का अंत केवल दंड हो सकता है। पाप एक फंदा है जिसके जाल में मनुष्य फंसता चला जाता है और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। पाप ही मनुष्य की सजा होती है और वह अपने ही अधर्म की रस्सियों में बंधता चला जाता है। इसलिए पाप से दूर रहने और पवित्रता का मार्ग अपनाने का इस सूक्ति में संदेश दिया गया है। पाप, बुराई, अपराध ऐसे फंदे हैं जो आनंद को नष्ट कर देते हैं, जबकि धर्मी जो पाप और बुराई का परित्याग करता, वह स्वतंत्रता और सुरक्षा में चलता है। वह आनंद के गीत गाते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए जीता है और सुख एवं शांति का सुखद अनुभव प्राप्त करता है। बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित प्रज्ञा ग्रंथ में भी धर्मियों या धर्म परायण व्यक्ति के लिए यही कहा गया है, धर्मी सदा सर्वदा जीवित रहेंगे, उनका पुरस्कार प्रभु के हाथ में है और सर्वोच्च ईश्वर उनकी देखरेख करता है। आगे 29वें अध्याय के 7वें पद में लेखक कहता है, धर्मी दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट को उनकी कोई जानकारी नहीं होती। श्रोताओं, यह अफसोस की बात है कि हर कोई जो निर्धन के रूप में मुकदमा लड़ता है, उसके पास एक ईमानदार कारण होना चाहिए, जबकि दुष्ट न्याय को परे कर देता है और बरी कर दिया जाता है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि धर्मी न्यायाधीश गरीबों के मामले पर विचार करता है, किंतु बेईमान वकील, न्यायाधीश या अधिवक्ता दुष्ट का पक्ष लेकर न्याय की तौहीन करता है। दूसरी ओर जो गरीबों की चिंता करता उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ता है, वह स्तोत्र ग्रंथ के 41वें भजन के अनुसार धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता, प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है।
धन्यवाद प्रभु तुझको दूंगा, निष्ठावान हृदय के साथ। धन्यवाद प्रभु तुझको दूंगा, निष्ठावान हृदय के साथ। धन्यवाद प्रभु तुझको दूंगा, क्योंकि सुनी
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस को संत पेट्रस महाकिर्च घर की सीढ़ियां अकेले चढ़े 5 साल हो चुके हैं। उस शाम बारिश हो रही थी, प्रांगण पूरी तरह खाली था, लेकिन दुनिया भर के लाखों लोग उनसे जुड़े हुए थे, अपने टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए थे। लॉकडाउन के लंबे क्वारंटाइन के अंदर बंद थे, अदृश्य वायरस से भयभीत थे जो कई लोगों को अपना शिकार बना रहा था। उन्हें अस्पतालों की गहन देखभाल इकाइयों में लिया जा रहा था। रिश्तेदार उन्हें देख नहीं पा रहे थे, ना ही मिल सकते थे, यहाँ तक कि उनके लिए अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते थे। अपने हाव भाव, अपनी प्रार्थनाओं और अपने प्रेरितिक आवाज संत माता के चैपल से दैनिक मिसा बलिदान के द्वारा संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी ने खुद को सभी के करीब रखा। उन्होंने प्रांगण के खालीपन में पौत्र संस्कार की आशीष दी, क्रूस के चरणों को चूमने के सरल कार्य में उन सभी को गले लगाया जो बसंत की शाम के कठोर मौसम के संपर्क में आने से रो रहे थे। पोप ने बाद में बतलाया, मैं लोगों के संपर्क में था, मैं कभी भी किसी भी पल अकेले नहीं रहा, अकेला लेकिन अकेले नहीं, खोई हुई दुनिया के लिए प्रार्थना करते हुए। यह एक शक्तिशाली अविस्मरणीय तस्वीर थी जिसने उनके परमाध्यक्ष काल को चिन्हित किया। उस अवसर पर पोप फ्रांसिस ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, आप हमें इस परीक्षा की घड़ी को चुनने के समय के रूप में स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। यह आपके न्याय का समय नहीं बल्कि हमारे निर्णय लेने का समय है। यह चुनने का समय कि क्या मायने रखता और क्या मिट जाता है, यह आपके, प्रभु और दूसरों के संबंध में हमारे जीवन को वापस पटरी पर लाने का समय है। उसके बाद वाले महीनों में पोप ने दोहराया कि एक संकट हमें कभी भी पहले जैसा नहीं छोड़ता, कभी नहीं। हम या तो बेहतर तरीके से बाहर निकलते हैं या बदतर। 5 साल बाद चारों ओर देखते हुए यह दावा करना असंभव है कि हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं, जबकि विश्व युद्ध के शासकों की हिंसा से हिल गया है, जो भूख से लड़ने के बजाय पुनः शस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अब क्वारंटाइन में नहीं हैं और अब स्थिति बदल गई है। संत पेत्रुस महाकिर्चा घर का प्रांगण जुबली मनाने वाले लोगों से भरा है, जबकि रोम के धर्माध्यक्ष संत माता आवास के अपने कमरे से हमारे लिए और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे अनुपस्थित हैं क्योंकि गंभीर निमोनिया से पीड़ित हैं। फिर भी यह संबंध टूटा नहीं है और उस दिन के उनके शब्द आज भी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। विशेषकर आज यह चुनने का समय है कि क्या मायने रखता और क्या गुजर जाता है। यह है हमारे संपादकीय निदेशक अंद्रिया तोर्नेली का चिंतन, जिसको उन्होंने संत पापा फ्रांसिस की ऐतिहासिक स्तात्स्य और विस्प्रार्थना की 5वीं वर्षगांठ पर किया है। करुणा के मिशनरियों की जयंती दुनिया भर के 500 पुरोहितों को एक साथ लाएगी। 28 से 30 मार्च को छठे जयंती समारोह में भाग लेने के लिए विश्व भर के करुणा के मिशनरी अपने परिवारों और सहयोगियों के साथ वैटिकन में एकत्रित होंगे। अमेरिका, इटली, पोलैंड, ब्राजील, स्पेन, फ्रांस, मेक्सिको, जर्मनी, स्लोवाकिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, यूक्रेन, कोलंबिया और भारत उन देशों में शामिल हैं जहां से करुणा के लगभग 500 मिशनरी वैटिकन की यात्रा कर रहे हैं। शुक्रवार 28 मार्च से शुरू होकर रविवार तक चलने वाला यह समारोह आशा को समर्पित पौत्र वर्ष के लिए निर्धारित मुख्य कार्यक्रमों में से छठवां कार्यक्रम है। पोप फ्रांसिस जो रोम के जेमिली अस्पताल में एक महीने से अधिक समय रहने के बाद संत माता आवास में वापस आ गए हैं, समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनसे लिखित संदेश मिलने की उम्मीद है। करुणा के मिशनरियों की संख्या, जिनकी विशेष सेवा की स्थापना पोप ने 2015 में करुणा की असाधारण जयंती के दौरान बुल ऑफ इंडिक्शन के साथ की थी, लगातार बढ़ रही है। आज दुनिया भर में 1258 पुरोहितों की नियुक्ति हो चुकी है। इन मिशनरियों को ईश प्रजा के लिए कलीसिया की ममतामय देखभाल के प्रतीक के रूप में परमधम पीठ के लिए आरक्षित पापों को भी क्षमा करने का विशेष अधिकार दिया गया है। करुणा के मिशनरियों की जयंती शुक्रवार 28 मार्च को सुबह 10 बजे वैटिकन के पॉलसस्टम सभागार में प्रार्थना के साथ शुरू होगी, जो मिशनरियों की चौथी विश्व बैठक का उद्घाटन भी होगा। 13 अप्रैल को खजूर रविवार के ख्रिस्त्याग समारोह से लेकर पुण्य सप्ताह और 27 अप्रैल को दिव्य करुणा रविवार को कार्लो अकुतिस की संत घोषणा तक वैटिकन प्रेस कार्यालय का कहना है कि पोप की संभावित उपस्थिति आने वाले हफ्तों में उनके स्वास्थ्य में सुधार से निश्चित होगा। धम्म विधिक समारोहों के लिए परमधम पीठ कार्यालय ने 13 अप्रैल खजूर रविवार से लेकर 27 अप्रैल दिव्य करुणा रविवार तक आयोजित होने वाले पौत्र मिस्सा समारोहों का कैलेंडर प्रकाशित किया है। 13 अप्रैल को खजूर रविवार के अवसर पर येसु के यरूशलेम में प्रवेश और उनके दुख भोग की यादगारी में सुबह 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पौत्र मिस्सा संपन्न होगा। पौत्र सप्ताह के गुरुवार 17 अप्रैल को संत पेत्रुस महागिरजाघर में प्रातः 9:30 बजे क्रिज्म मिस्सा होगा और अगले दिन 18 अप्रैल को शाम 5 बजे महागिरजाघर में प्रभु के दुख भोग की धम्म विधि संपन्न की जाएगी। उसी दिन हर वर्ष की तरह रात 9:15 बजे कोलोसियम में क्रूस रास्ता की प्रार्थना की जाएगी। 19 अप्रैल पुण्य शनिवार को पास का जागरण पौत्र मिस्सा 7:30 बजे शुरू होगा। 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पास का महापर्व का समारोह ख्रिस्त्याग होगा और उर्बी एत और भी आशीष प्रदान की जाएगी। अंत में 27 अप्रैल को दिव्य करुणा रविवार की सुबह 10:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में किशोरों की जयंती के हिस्से के रूप में धन्य कार्लो अकुतिस की संत घोषणा समारोह संपन्न की जाएगी। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदश पॉल रिचर्ड कलाघर आज शाम यानी गुरुवार 27 मार्च को हंगरी की अपनी यात्रा आरम्भ कर रहे हैं तथा रविवार 30 मार्च तक मध्य यूरोपीय देश में रहेंगे। इस अवसर पर वे द्वितीय विश्व युद्ध 1930 से 1945 के बीच बुडापेस्ट के दिवंगत प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदश अंजेलो रोत्ता की मृत्यु की 60वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में भाग लेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।